जगन्नाथपुरी में आगे आकर दिए यहाँ पर इधर आगे तुम्हारा चले आ सकते इधर आ भी इधर आ आज ही के दिन में जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर आज धुतकले पुरुषोत्तम में इन महापुरुष का जन्म हुआ। जन्म के समय में ही उनके श्री अंग में कोई सूता धागा नहीं, वो चिन्ह था। जैसे तिलक का चिन्ह होता, तिलक नहीं, हम लोग तिलक नहीं करेंगे तो भी तिलक का चिन्ह रहेगा, वैसे वो गोवित नहीं था किंतु गोवित के चिन्ह सब अंगों में और तिलक के द्वादश अंगों के चिन्ह भी अंगों में था। उनकी माता जी ने भक्ति विनोद ठाकुर को दिखलाया है, ये सब दर्शन उसमें देख रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे में एक कोई सिद्ध वैष्णव महापुरुष का प्रभाव है, खूब अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर अन्न प्राशन के दिन जगन्नाथ जी का रथ 10-11 था, वहीं पर रुक गया, हाथियों को लगाया गया, नहीं चला। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इन नवजात शिशु को रथ पर चढ़ाकर और वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर उसके मुख में दिया और उनका प्रसादी मालाएं उनके गले में दे दिया, बस अपने आप रथ सब लोग देकर के आश्चर्य। यह बालक का धार्मिक बालक भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम रख दिया विमला प्रसाद, विमला जी का ये प्रसाद। गुरु महाराज जी जब हम लोग ये पत्रिका भोजन पत्रिका प्रकाशित हुई मैं आया था 47 के फरवरी में, दिसंबर में शायद आया, उसके बाद ही ये पत्रिका आरंभ हुई और उसके बाद में खूब विशाल रूप में परिक्रमा हो गई, कार्तिक की परिक्रमाएं निकल रही है और ये पत्रिका भी आरंभ हो गई। पहली पत्रिका में गुरु जी जब आरंभ किया तो इसका नाम रखा वैकुंठ वार्ता बह। वैकुंठ वार्ता बह माने जगत गुरु नित्य लीला प्रवृत्त श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोलोक वैकुंठ में है। वैकुंठ के अंतर्गत गोलोक वृंदावन में है और वहाँ जो जो कुछ बातें होती हैं वहाँ का वार्ता वहाँ से प्रेरणा करते हैं। कहाँ प्रेरणा करते हैं? इस जगत इनके पास में अपने प्रियजनों के पास। तो प्रियजन कौन है? तो उनके पास में वो वार्ता भेजते हैं और वो लोग वो वार्ता को लेकर के इस पत्रिका के माध्यम से जगत में प्रचार करते हैं। इसलिए ये जगत की वार्ताएं इसमें नहीं है, वैकुंठ जगत के संवाद इसमें है। इसलिए वैकुंठ वार्ता वह माने वहन करना, ले करके रखना अपने अंदर। तो ये वैकुंठ की वार्ता इसमें, वैकुंठ वार्ता जगत की इसमें कोई नहीं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले रखा विरह मांगल्य, गुरु वैष्णव की वंदना करके कोई भी काम हो गुरु वैष्णव हरि गुरु वैष्णव तीनों की वंदना से आरंभ करना चाहिए। यही मंगलाचरण। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? किसी काम के पहले करने के पहले मंगल आचरण होता है, जो कि जिस काम को आरंभ करते हैं वो अंत तक सफल हो। जिसके लिए हम कर रहे हैं वो काम सफल हो, इसलिए ये मंगल आचरण। जैसे चैतन्य चैतामृत लिख रहे हैं तो उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया? वंदे हम श्री गुरु श्री दूत पद कमलम इत्यादि से लेकर के जयतां सुरतौ इत्यादि। इसलिए चैतन्य चैतामृत जो है जहाँ तक मैं लिखना चाहता हूँ वो इसलिए हरि गुरु और वैष्णव तीनों प्रसन्न हो और जगत का कल्याण अपने लिए नहीं, तभी काम अगला चरण। वैकुंठ की वार्ता जिसमें है, जिसको वहन करती है जो पत्रिका, उसके लिए मंगलाचरण की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां से वो वार्ता भेज रहे हैं, अब इसको जगत में हम वितरण कर सके और जगत के लोग इसको ग्रहण कर सके, इसलिए मंगलाचरण की जरूरत है। तो मंगलाचरण में पहले कर रहे हैं आज प्रचुर हर्ष और आनंदेर मध्य विषाद वेदनाई जालिया वर्ती। एक मान लिया ये लड़का है, उसकी शादी हो रही है, आनंद की बात है ना, और एक वर्ष पहले ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और पिताजी नहीं है, उसकी शादी हो रही है। तो पिताजी नहीं है इसके लिए क्या होगा? उनकी याद आएगी, आज उनकी छात्र छाया हमारे ऊपर में। ये तो हुआ विकार। और हर्ष किस लिए? शादी हो रही है। आज इस वैकुंठ वार्ता का शुभारंभ कर रहे हैं, इसलिए आनंद है। किंतु कुछ विषाद है, क्यों? उसी को बतला रहे हैं विषाद की वेदना। जहां पर अत्यंत अधिक प्रेम होता है जिस व्यक्ति के साथ में, उसके दो पहलू एक साथ में उठते हैं। यदि उसका मिलन है तो मिलन में विषाद की एक रेखा विप्रलंब, और विप्रलंब में मिलन की याद आती। आदमी रोता किस लिए है? विरह अवस्था में उस व्यक्ति के गुणों को स्मरण करके, उस व्यक्ति को स्मरण करके आज के दिन में रोता है, तो मिलन की याद आती है, इसलिए वो रोता है। इसलिए रोने में मिलन की कुछ छाया है और आनंद में भी, जैसे गोपियों का कृष्ण से मिलन में भी जीवा की छाया कहीं योग न हो जाए। इसलिए वैष्णव के विरह और आदिभाव, आदिभाव और शिरोभाव दोनों एक साथ पद्य पर, जिसलिए उनका आदिभाव होता है, शिरोभाव भी उनका उसी लिए होता है, जगत के कल्याण। क्यों विरह में क्या कल्याण होगा, इसलिए कल्याण होगा। विरह में कल्याण इसलिए होगा कि विरह में मिलन की स्मृति आई। प्रभुपाद जी का विरह हो रहा है मतलब क्या, उनके दैनिक दिनचर्या, उन्होंने जो जो कुछ कार्य किए हैं उनका स्मरण होने से क्या होगा, जब उनका कल्याण, जो जो उनका स्मरण करेंगे उनका कल्याण। इसलिए दोनों में एक ही जाति है, आविर्भाव होता है जगत कल्याण के लिए और योग भी उसके लिए होता है। देखो कितना सुंदर लिखते हैं, ये लेखनी कहती है, इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ। हृदय वेदना, हृदय और उस धराके के चेता पर ले, हृदय की वेदना हृदय और उस बंद करते रखने की चेष्टा करने पर भी दीर्घ निश्वास कहा व्यक्त कर लिया है। कोई पानी गर्म हो रहा है और ढक्कन से उसको बंद कर दो तो क्या होगा, उसका बात उठा करके उस ढक्कन को हटा करके उसमें से फस 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 कर करके वो भी वायु, उसी प्रकार से हृदय की वेदना हृदय में और रखने की चेष्टा करने से दीर्घ निश्वास, कोई आदमी अत्यंत दुखी रो नहीं रहा है, दीर्घ लंबा समझोगे इसमें दुख, अरे आज मैं रो नहीं पा रहा किंतु रोने के भाव को मैं बंद नहीं कर पा रहा, निश्वास वायु विरोधित और विक्षोभित हुई है, शब्द पढ़ने से ही वही निश्वास वायु शब्द का धारण कर, शब्द ही क्रंदन, उसी का नाम है। इसमें अलंकारिक भाषा इत्यादि सभी कुछ इसमें आते, वही भाषा अर्थस्फू कंठ रुद्ध और गदगद है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गज गव करते विरह में। तथापि अवगुंठिता विरह वेदना, अवगुंठिता मैंने क्या, अवगुंठित मैंने उसको रुद्ध कर दिया है, वही विरह वेदना व्यक्त होने से ही किंचित प्रशमित हो जाए, कुछ कुछ कम जाती है। आदमी को दुख आया यदि रो दे खूब जोर से तो दुख कम जाएगा, या किसी से कह दे और न कहे न रोए न तो हृदय में एकदम फट जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए मैं गुरु पाद पद्म और उनके एकनिष्ठ सेवक ठाकुर श्रील नरहरि सेवा दे गुरु प्रभु आदर्श जनित क्लेश लांछित लेखनी आज कंपित पदे धीरे धीरे मंथर गति से अग्रसर है। कृष्ण के आकर्षण करिया हृदय और उद्धव करिया, सबसे जगत में आकर्षक कृष्ण है और इसलिए उनका नाम कृष्ण, उनको भी जो हृदय में आकर्षण करके अवरुद्ध रख सकते थे या अवरुद्ध किया था, जो सर्वशक्तिमान भगवान को भी प्रियत से पराभूत कर दिया, अपने प्रेम से उनको पराभूत कर दिया और पराभूत करके नहीं चाहने पर भी अपनी इच्छा से दूसरों के हृदय में, सेवकों के हृदय में पूर्ति कर दिया। ऐसा करने में समर्थ थी। क्या क्या समझा? जो सबके विश्व में आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, आकर्षण, और उस कृष्ण को भी अपने प्रेम से, प्रेममयी सेवा से आकर्षण करके अपने हृदय में औषध कर दिया और उनकी कृष्ण की इच्छा नहीं होने पर भी अपनी इच्छा से अनुग्रह करके दूसरों के हृदय में उस कृष्ण को प्रेरित कर सकते हैं, करने में समर्पण करने में समर्थ हैं। जो हरि के, श्री हरि के समस्त गुणों के समाहरण करके अपने हृदय में रख करके निर्गुण ब्रह्मवादियों को वंचित किया करते हैं। माने क्या? निर्गुण ब्रह्मवादी में कोई गुण नहीं होता, इसलिए भगवान के जितने भी गुण होते हैं उनके भक्तों में होते हैं, इसलिए उन सब गुणों को अपने में रख लिया, कोई गुण बचा नहीं, इसलिए निर्विशेषवादी निर्विशेष हो गए, उनमें कोई भी गुण नहीं। वही गुरुपाद पद्मशील प्रभुपाद जगत गुरु रूपे चैतन्य वाणी और व्यास वाणी सार्थकता संपादन यज्ञ, चैतन्य वाणी और व्यास वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी ही व्यास की वाणी है, बल्कि व्यास की वाणी में जो कुछ नहीं है वो भी महाप्रभु के बारे में, उसको उसी के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पूरी धाम में अवतीर्ण हुए थे। वेदों में भी ऐसा, पुराणों में ऐसा लिखा गया कि पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम के द्वारा पूरी क्षेत्र में महापुरुष का आविर्भाव होगा। इसकी सत्यता करने के लिए वो पूरी धाम में प्रकट हुए। जो मेरे जैसे विषयी धुरंधर दुर्दांत प्रकृति के पतिता धम को केश आकर्षण कर अपने पाद पंकज की धूली के समान बनाया था, गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं, विषयी दुरंधर दुर्दांत प्रकृति और पतिता धम दीनता से करे है नहीं, किंतु तो अपने को ऐसा ही समझते हैं जैसे सनातन गोस्वामी अपने को समझते हैं। ऐसे यदि हम में कुछ गुण है तब तो ऐसा सोचने पर अभिमान होगा, और हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं है तो उसमें दीनता है, तो ये महापुरुष लोग ऐसा ही समझते हैं और हम मूर्ख लोग अपने को महाभक्त समझते हैं, गुणी समझते हैं। तो वो करें हमारे जैसे व्यक्ति को, धुरंधर पतित को भी, जिन्होंने तेज आकर्षण करके भगवान के चरणों में लगा दिया, जो कारिण्य गुणे ईश्वर की अपेक्षा श्रेष्ठ होने पर करुणा की दृष्टि से भगवान में करुणा है अधिक न गुरु में करुणा है, भगवान का सारा करुणा गुण निकाल करके गुरु के रूप में है, इसलिए गुरु जी ऐसे हैं। तो कहते हैं हमारे गुरु जी करुणा की दृष्टि से भगवान से भी बढ़ करके ये करुणा है। क्यों? कृष्ण जो चीज नहीं देंगे उसको भी ये गुरु क्या देंगे? अक्षय जातीय जो भाव है, सेवा की भावना है, सेवा जो प्रेम है, उसको देते हैं ये गुरु। परमहंस कुल के आदत्त महापुरुष और इस जगत में अपने को परमहंस कहते हैं, उन्होंने अपना स्वरूप छिपा दिया। उनका स्वरूप क्या है? नयन मंजर, कृष्ण की प्रिया, राधिका जी के प्रिय सहचरी सखी सेविका, ये स्वरूप से उनका है। कितना ऊंचा है यहाँ पर कि ब्रह्मा और शंकर नहीं जा सकते गोलोक वृंदावन में, वहां पर उनकी नित्य सेवा करते हैं रूप गोस्वामी इत्यादि के अनुगत होकर, अनुगामी के रूप। और उस स्वरूप को छिपा करके इस जगत में बद्ध जीव जैसा बन करके अपने को परमहंस कह रहे हैं, किंतु नास्तिक इस चीज को समझता नहीं। उस जगत के स्वरूप को छिपा करके इस जगत में मुक्त महापुरुष अथवा परमहंस के रूप में इस जगत में अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं। ओम विष्णु जो अपने को ओम विष्णु पाद से समझ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में अपना परिचय देते हैं, या परिचय देना उनके लिए कैसा है?
वंचना
करना है। कहां वो इतना उच्च और अपने को जगत में परमहंस कह रहे हैं, इसलिए परमहंस से बहुत ऊंचा भाव। संक्षेप में विश्ववासी उनको श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं। जिनका पांडित्य और प्रतिभा समग्र भारत में क्यों समस्त विश्व को विमोहित किया, कोई पाश्चात्य देश के बड़े भारी दार्शनिक कलकत्ते में आए थे और प्रभुपाद जी का भाषण हो रहा था। वो भारत के विभिन्न शहरों से घूम करके आए थे, आकर के प्रभुपाद जी का भाषण सुना। गुरु जी देख रहे थे कौन कैसा सुन रहा है, वो गेट पर खड़े होकर के सुन रहे थे बैठकर। तो जब वक्तृता हो गई तो उससे पूछा, आपने कैसा सुना? बहुत ही बड़ी, ऐसा आज तक मैंने जीवन में नहीं सुना। तो गुरु जी ने पूछा कि आपको इसमें से कौन सी बात इनकी अच्छी लगी जो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? तो हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हुई? तो बड़ी भारी ये बात हुई, विश्व में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिनकी बातों को मैं नहीं समझ सकता, खूब आसानी से समझ जाता हूँ, बल्कि मैं भी जानता हूँ पूरा, किंतु इस महापुरुष की कोई बात भी हमारे समझ में नहीं दी। ये क्या कर रहे
हैं? वो अंग्रेजी लोग और अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद बोलते हैं, उनका मातृभाषा अंग्रेजी है,
अंग्रेजी में ही बोल रहे थे तभी इसके समझ में। वो आएगा कैसे? पद्म ज्ञान पर तत्व इत्यादि जब नाम लेंगे तो उनके समझ में क्या आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा भी समय कोई भी दार्शनिक नहीं था जो इनकी प्रतिभा से पराजित न हो गया। मैं अपने को समझता था, मैं अपने को कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ समझता हूं। तो गुरु जी का एक दिन हम अपने आने के करीब करीब 10-15 वर्ष बाद नवद्वीप परिक्रमा में मैं गया था यहां से। तो गुरु जी उस दिन भाषण दे रहे थे, तो मैं उनके भाषण परिकरित समझने की चेष्टा करता था, समझता भी था, किंतु उस दिन एक अद्वैतवादी पंडित आ गया सभा में और गुरु महाराज जी का भाव भी बदल गया एकदम, अद्वैतवाद का खंडन करने में लग गए और इतना उच्च कोटि का वो दार्शनिक भाषण उन्होंने दिया जो मेरे संबंध में समझ में कुछ भी नहीं आया, मुझको नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा जैसे मुझको अभी मानता कि मैं सब समझता हूँ, किंतु आज एक बात भी उनकी समझ में नहीं आई। तो गुरु जी भी कैसे बड़े भारी दार्शनिक थे, और ये सब लोग जो थे ना उस समय के बड़े बड़े पंडित, नेमी महाराज, वो भाती महाराज इत्यादि, सिद्धार्थ महाराज और सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े विद्वान अगा विद्वानों में वो एक थे बाबा जी निरक्षर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मुकुंद दास विनोद बाबा जी। तो सब लोगों को बुलाते थे, विनोद गुरु जी को बोले विनोद আর ও গৌরীমঠ কা অনন্ত ও বাসুদেব আনন্দ বাসু ও সুন্দর আনন্দ শুনো ও তীর্থ মহারাজ কাজী নাম কাতারে
কুঞ্জলি হাজি
কুঞ্জি এক শুনো সব লোক এইরকম হেসলাতে আজ প্রভুপাদ নে ক্যা কহা সব লোক কাছে কলা বিখেছো তোমরা তুম লোক কিছু ভি সমঝাই নাই अभी भी तुम लोग प्रभुपाद जी का प्रबंध पढ़ो बहुत दिनों तक पढ़ने नहीं नहीं पढ़ने से और गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं सुनने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भक्ति बने ठाकुर की भाषा सहज है सरल है किंतु इनकी भाषा बड़ी कठोर दिखती है किंतु इसका अर्थ दूसरा नहीं होगा एक ही अर्थ होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर की दूसरा भी अर्थ कर लेता किंतु इनका सीधा साधा एकदम एक भाव किंतु भीतर में प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन एक एक पेज के एक एक सेंटेंस होंगे समझ में नहीं आएगा साधारण आदमी तो नहीं समझेगा। अब हम लोग कुछ कुछ समझने की चेष्टा करते हैं पूरा तो आता नहीं किंतु फिर भी चेष्टा करते ऐसे दार्शनिक प्रभुपाद जी थे तो कहते हैं उस समय समग्र जगत में लोग इनके पांडित्य और ये सबसे दार्शनिक विचारों से सभी लोग पराभूत थे। कोई भी आता था तर्क करने के लिए तो बैठता था वो अपने आप बोलते थे अपने आप समाधान हो जाता फिर उनसे बातचीत नहीं करता था। गुरु जी का भी ऐसा था कोई भी आएगा प्रश्न करने की जरूरत नहीं जिनकी युक्तियां वज्र के समान कठोर विरोधी संप्रदाय के लिए तथा सतत भय का कारण उत्पन्न नहीं करते भयभीत लोग हो जाते थे उनकी युक्तियों को सुनकर के शास्त्रीय विचारों नए नए विचार सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास लिखा और उसमें लिखा ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का उपवेश होता है किंतु यदि कोई व्यक्ति श्रद्धालु हो तो जिस कुल में भी उत्पन्न हो वर्ण के आश्रम के बाहर शंकर शंकर माने क्या है
दो वर्णों का मिश्रण अनुलोम प्रति
अथवा अंत्यज वर्ण का भी हो किसी भी कुल में हो श्रद्धालु हो तो वो हरिनाम दीक्षा ले सकता है ठाकुर जी का पूजा अर्चन कर सकता है यहाँ तक ही संन्यास भी ले सकता है किसी भी जाति का वर्ण का हो सभी लोग ले सकते हैं यहाँ तक की महिलाओं में भी वो गुण होंगे तो जी मात्र के लिए ये सब है महिलाएं भी
ब्रह्मचर्य
जितना मंत्र है वो सब ग्रहण कर सकती हैं ठाकुर जी की शालग्राम की सेवा कर सकती हैं इसके पहले ये सब मना था किंतु भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है हरिभक्ति व्यास में ये दिया गया है कोई भी व्यक्ति हो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर के यहाँ तक की महिलाएं भी और अंतज वर्ण में भी उत्पन्न होने वाला व्यक्ति और इन तीन वर्णों की बीजों की तो बात ही क्या है शालग्राम के भी विष्णु वैष्णव सबकी सेवा वो करने के लिए जुट जाए ये सब दिखला है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर का आरंभ करो वहां से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से और भक्ति विनोद ठाकुर का नीच जातियों को निम्न जातियों में श्रद्धालु बहुत से होने पर भी उनको जगह नहीं कराया नहीं दे सके संन्यास की बात तो बहुत दूर की बात है संन्यास तो दिया ही नहीं यहाँ तक कि और महिलाओं को भी शालग्राम शिला में अधिकार है उनको ठाकुर घर में जाकर के वो पूजा अर्चन करें समाज में ऐसा आदमी कोई नहीं उत्पन्न हुआ कह नहीं सकता था भक्ति विनोद ठाकुर तक भी किसी ने ऐसा अधिकार दे करके ऐसा नहीं किया, या निम्न जातियों को भी जनेऊ दे करके और ठाकुर जी के स्वामी में नहीं लगा सके। ये पहले महापुरुष है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इन्होंने दैव वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। ये पहले व्यक्ति, इन्होंने कहा कि स्त्रियां भी शालक राम शालक पूजा करने के अधिकारी हैं, वो भी जीव हैं, इनको भी भगवत भक्ति में अधिकार है। जीव मात्र का भगवत भक्ति में अधिकार है, किंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि उनमें श्रद्धा नहीं है, मांस इत्यादि खाते हैं, कोई गुण नहीं है, तो ठाकुर जी की पूजा करने के अधिकारी नहीं है। गोस्वामी भी गोस्वामी नहीं कहलाएगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है और उसमें इंद्रियों को जीत करके भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो गोस्वामी नहीं है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। केवल सूत्र से ही ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, कल गोस्वामी कुल में जन्मने से ही वो गोस्वामी नहीं हो जाएगा, उसमें गुण चाहिए। ये इन्होंने